कांग्रेस की स्थापना का सच। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो अप्रत्याशित घटना थी और न ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी। 1870 के दशक के अंत में और 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक हो चुकी थी। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी संकीर्ण हितों के लिए आवाज़ उठाने के बजाय राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने को छटपटाने लगे थे। उनके इस प्रयास को सफलता मिली। एक राष्ट्रीय दल का गठन हुआ, एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफार्म, एक संगठन, एक मुख्यालय। इस राष्ट्रीय दल के गठन के लिए जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, अंग्रेज सरकार उससे बखूबी परिचित थी। उसे पूर्वाभास हो गया था कि क्या होने वाला है। राजनीति में सक्रिय भारतीयों को संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। हुकूमत को लगा कि असहयोग, देशद्रोह और आयरलैंड की तरह के आंदोलनों का दौर शुरू होने वाला है। विदेशी हुकूमत का संदेह तात्कालिक नहीं था, इसका ठोस ऐतिहासिक आधार था। उस समय की राष्ट्रीय मांगें थीं, आयातित सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में कमी न करना, हथियार रखने का अधिकार न देना, अधिकार देना, प्रेस की आज़ादी, सेना पर खर्च में कटौती, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायतार्थ और अधिक राशि आवंटित करना, प्रशासनिक सेवा का भारतीयकरण, अर्धसैनिक बलों एवं स्वैच्छिक संगठनों में भारतीयों को भी शामिल होने का अधिकार, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर आपराधिक मुकदमे की सुनवाई का अधिकार, अंग्रेज मतदाताओं के बीच इस तरह का प्रचार कि वे उसी दल को वोट दें जो भारतीयों के हितों का ख्याल रखें। उन मांगों को यदि अलग अलग करके देखा जाए तो ये बड़ी सतही लगेगी, पर ब्रिटिश हुकूमत इन मांगों को भी आसानी से मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि यदि ये मांगें मान ली गईं तो भारतीय जनता पर अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा ढीला हो जाएगा। 1875 से 1885 के दौरान भारत में जो नई राजनीतिक चेतना पनपी वह मुख्यतः युवा वर्ग की देन थी। ये युवा ज़्यादा लड़ाकू और राष्ट्रवादी थे। इनमें से अधिसंख्य इन्हीं 10 वर्षों के भीतर राजनीति में आए थे। इन्होंने एक नया संगठन बनाया, क्योंकि इन्हें लगा कि पुराने संगठन दकियानुसी हो गए हैं, उनका जनाधार भी ठोस नहीं है, न उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है, न नीतियाँ। बतौर उदाहरण बंगाल का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन धीरे धीरे जमींदारों के हितों का पोषक बन गया था और अंग्रेजों के खिलाफ उसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन दक्षिणपंथी और मरणासन्न हो गए थे। यही कारण था कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। मद्रास के युवा नेताओं एम वी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अयर, पी आनंद चारलू आदि ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। बम्बई में युवा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी नेता के टी तेलंग और फिरोज शाह मेहता राजनीतिक मतभेदों के कारण पुराने नेताओं दादा भाई फ्रामजी और दिनसा पेटिट से अलग हो गए। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। पुराने संगठनों में केवल एक संगठन पूना सार्वजनिक सभा का अस्तित्व बरकरार रहा, क्योंकि इसका नेतृत्व पहले से ही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। इन वर्षों के दौरान देश में एक नई राजनीतिक चेतना अंगड़ाई लेने लगी थी, नए राजनीतिक जीवन की उत्पत्ति का संदेश मिलने लगा था। यह संदेश लेकर आए राष्ट्रवादी अखबार हिंदू ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा और केसरी, ये सभी राष्ट्रवादी अखबार इसी दौरान निकलने शुरू हुए और 1918 तक भारतीय राजनीति पर छाए रहे। अमृत बाजार पत्रिका ही एक अपवाद था, इसका प्रकाशन पहले से ही हो रहा था। 1878 में यह अंग्रेजी भाषा का अखबार हो गया। 1885 आते आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म अवश्यंभावी हो गया, एक ऐतिहासिक जरूरत। देश के सभी राष्ट्रवादियों ने इस जरूरत को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। 1877 के बाद इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए गए उस पर आज के कई इतिहासकार विस्तृत रूप से लिख चुके हैं। 1883 के बाद इन प्रयासों में काफ़ी तेजी आई और राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कलकत्ता से प्रकाशित इंडियन मिरर ने तो इस सवाल को जिहाद लेकर जिहाद छेड़ दिया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के सत्र में शामिल न हो सके। इस बीच भारतीयों में काफ़ी आत्मविश्वास आ चुका था। इससे पहले के 10 वर्षों के दौरान तमाम आंदोलनों से उनके लड़ाकू प्रवृत्ति आ गई थी। 1875 के बाद से वस्त्र आयात शुल्क को लेकर लगातार आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन भारतीय वस्त्र उद्योग के हित में आयात शुल्क को बरकरार रखने के लिए चलाया जा रहा था। 1877-78 के दौरान सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण के लिए जबरदस्त आंदोलन चला। सरकार ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण करना चाहा, तो प्रेस ने आंदोलन छेड़ा। आर्म्स एक्ट के माध्यम से जब भारतीयों का हथियार रखने का अधिकार छीना जाने लगा तो आंदोलन छेड़ा। सन 1881-82 में बंगाल मजदूर और स्वदेशी आव्रजन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इस कानून ने बागान मजदूरों को एक तरह से दास बना दिया था। 1883 में एल्बर्ट विधेयक के समर्थन में आंदोलन हुआ। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय नागरिकों पर आपराधिक मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपीय नागरिकों ने इस विधेयक को पास तो नहीं होने दिया, लेकिन इससे भारतीयों ने एक राजनीतिक सबक जरूर सीखा। भारतीयों की पराजय का कारण था कि इनका कोई देशव्यापी संगठन नहीं था, जबकि यूरोपीय नागरिकों का विरोध संगठित था। भारत और ब्रिटेन में एक साथ राजनीतिक आंदोलन चलाने के उद्देश्य से जुलाई 1883 में देशव्यापी स्तर पर धन इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। 1885 में भारतीयों ने स्वैच्छिक संगठनों में भागीदारी के लिए आंदोलन छेड़ा और उसके बाद अंग्रेज मतदाताओं से अपील की कि वे उसी उम्मीदवार को वोट दें जो भारतीय हितों का रक्षक हो। कई भारतीय नेताओं को ब्रिटेन भेजा गया, जहां उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले के कुछ वर्षों से देश में चल रहे राजनीतिक कार्यकलाप और गतिविधियों की स्वाभाविक परिणति थी। उस समय तक देश की राजनीतिक परिणति ऐसी बन गई थी कि यह जरूरी हो गया था कि कुछ बुनियादी काम और लक्ष्य तय किए जाएं और उनके लिए संघर्ष शुरू किए जाएं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह जरूरी था कि देश के राजनीतिक कार्यकर्ता मंच पर आएं। अखिल भारतीय आधार पर गठित कोई एक संगठन ही ऐसा मंच प्रदान कर सकता था। ये सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े थे और एक दूसरे पर आधारित थे, और इन्हें तभी हासिल किया जा सकता था जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश शुरू की जाती। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुए सम्मेलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, उनके लिए ये बुनियादी लक्ष्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और वे यह आशा लेकर ही वहां गए थे कि इन लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत बम्बई से हो सकेगी। कांग्रेस की सफलता या विफलता और बाद के वर्षों में उसके चरित्र का निर्धारण बजाय इसके कि उसकी स्थापना किन लोगों ने की, इससे किया जाना चाहिए कि अपनी स्थापना के शुरुआती वर्षों में इन लक्ष्यों को हासिल करने में वह कहां तक सफल रही।